तस्मै श्री गुरवे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञेय राधे तन्नय माम चरणं।
सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति ज्ञापन कर उनके चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। मैं विश्व के समस्त छोटे बड़े राष्ट्रों में अमेरिका दक्षिण अमेरिका मैक्सिको अर्जेंटीना कनाडा इधर यूरोपियन कंट्रीज और फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फिजी इत्यादि देशों में गया, एक बार नहीं 30 बार गया और वहाँ हम सनातन वैदिक धर्म श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत धर्म का हमने प्रचार किया। किंतु पास में ये जनकपुरी मैं कभी नहीं गया, बहुत दिन की इच्छा थी जो जनकपुरी का हम दर्शन करें क्योंकि इष्ट राम भी हैं, कृष्ण ही राम के रूप में परम कारुणिक लीलाओं को दिखला करके, इसलिए सीता जी के जन्म स्थान में हमको जरूर जाना चाहिए। हमने प्लान बना करके हमारे प्रिय सेवक सोमनाथ जी को मैंने कहा जी कोई प्लान बनाइए, उन्होंने प्लान बनाया पहले काठमांडू और आज यहाँ का प्रोग्राम, इसके बाद में कल जनकपुरी जाएंगे दर्शन करेंगे और फिर एक दिन विश्राम करके फिर दूसरे दिन हम लोग
परसों प्रोग्राम
फिर यहाँ पर भागवत धर्म सभा होगी। तो आज मेरा परम सौभाग्य है कि जनकपुरी दर्शन करने के माध्यम से हम नेपाल में प्रथम बार आए। यहाँ पर हमने कल परसों पशुपतिनाथ जी का दर्शन किया और आज यहाँ पर सभा हो रही है। हम लोग सनातन वैदिक धर्म और उसमें भी चैतन्य महाप्रभु के अनुगत प्रेम धर्म का प्रचार करते हैं, आज उसी के संबंध में यहाँ पर धर्म सभा हो रही है। एक आदमी धनाढ्य है, उसकी पत्नी सुंदरी है, उसके लड़के बड़े योग्य हैं, हाई पोजीशन पर है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या यहाँ का प्रधानमंत्री भी हो है, सब प्रकार से समृद्ध होने पर भी उसको भजन क्यों करना चाहिए? भजन की आवश्यकता क्या है, इस पर श्री रामचंद्र जी कुछ बोलिए। खड़े होकर के
वंदे राम श्री गुरु श्री पद कमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूपम सागर जातम तेरण रघुनाथ निर्गम आदरतम सावरूपम परिजन सहितम चैतन्य देव श्री राधा
जमींदार ने अपनी बहू को बुलाया, बेटी तूने ऐसा कहा
बोलती है हाँ पिताजी मैंने कहा। क्यों कहा? बोलती पिताजी वो भीख ही कुछ ऐसी मांग रहा था। तो क्या भीख मांग रहा था? पिताजी वो कह रहा था तीन जन्म का भूखा हूं, कोई राजा हो तो मुझको दो। क्या मांग रहा था? तीन जन्म का भूखा हूं, कुछ राजा हो तो मुझको दो। पिताजी ये कुछ जन्म पहले राजा था, दो जन्म पहले राजा था। अभिषेक गुरुदेव ने कहा सर संबंध था, बीवी बच्चे थे, लेकिन उस राजकाल में इसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, सिर्फ भोग विलास का काम किया, जिसके कारण ये दूसरे जन्म में एक बहुत गरीब आदमी बना। तो याद रखना अगर हम सब लोग बहुत सुख और संपन्न भी हैं, सब कुछ हमारा अच्छा चल रहा है और उस समय हमने अपने कार्यों को सही ढंग से सिद्ध नहीं किया, तो हम आगे कहां जाने वाले हैं हमको समझ लेना चाहिए। इसने भोग तो किए, इसने सुख लूटा, लेकिन इसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया और दूसरे जन्म में ये गरीब बना। गरीब बना, इतना गरीब बना कि फिर अच्छे काम नहीं कर सका, और तीसरे जन्म में अब ये भिखारी बना है, और भिखारी बनकर ये भीख मांग रहा है। ये कुछ साधु संघ ने समझ लिया है कि जब तक कर्मों को हम सही नहीं करेंगे तब तक कार्य नहीं बनेगा। कोई ऐसा साधु मिले, कोई ऐसा घर मिले जहाँ भगवान की भक्ति हो और वहां पर उसको कुछ ताजा माल मिले। तो ताजा माल का क्या मतलब है? जो अच्छे कर्मों का परिणाम हो। तो बोलती है बहू पिताजी हम भी तो भाषा खाते हैं, इस जन्म के कर्मों का तो खा नहीं रहे, पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, हम वही पकाते हैं वही हम खाते हैं, अब बदलाव मैंने क्या गलत कहा। तो हम लोग आज यहाँ जितने भी हैं अच्छी स्थिति में है, अच्छी पोजीशन में है, सिर्फ इसलिए है कि पिछले जन्मों के कर्मों से अच्छे कर्म करते हैं। जमींदार ने कहा ठीक है बेटी सारा बाजरा तो है दुनिया में बांट दे, दान कर, अच्छे कर्म कर। बोलती है पिताजी खाली बाजरा बांटने से अच्छे कर्म नहीं होंगे। तो अच्छे कर्म क्या होते हैं इस बात को समझना। तब उस छोटी सी लड़की ने अपने घर में समझाया अच्छे कर्म का मतलब है कि हम जिसके हैं जहां से आए हैं उससे जुड़ जाएं, यही अच्छे कर्म। हम जिसके हैं जहां से आए हैं उससे जुड़ जाएं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान से जुड़ जाएं, यही हमारा सबसे अच्छा कर्म है, इसको ही भजन कहते हैं। भजन मतलब भगवान के गुरुदेव पूछ रहे हैं हम क्यों भजन करें, हम इसलिए भजन करें कि अगर हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो हमारी क्या हालत है। एक छोटा सा पुंजा, एक छोटा सा पेच कार में लगा हुआ है तो वो पेच मर्सिडीज कार कहलाता है, और वही पेच अगर गिर के जमीन में गिर जाए तो उसको उठाकर हम कूड़े में फेंक देते हैं। अगर हम भगवान से जुड़े हुए हैं तो हम भगवान के ऊंची पोजीशन में, और अगर हम भगवान से अलग हो जाएं तो हमारी स्थिति है कि हम कूड़े में चले जाएंगे। तो इसलिए हम कूड़े में ना जाकर भगवान से जुड़कर अपनी नॉर्मल पोजीशन अपना लें, समझना, हमारी नॉर्मल पोजीशन, हमारी नेचुरल पोजीशन, हमारी स्वाभाविक स्थिति यह है कि हम भगवान से जुड़े। श्री गुरुदेव कल समझा रहे थे जुड़ने किसको कहते हैं, ईंट से ईंट जोड़नी है तो सीमेंट चाहिए, और आत्मा से भगवान को जोड़ना है क्या चाहिए, उस समय क्या चाहिए, उस समय एक ही चीज चाहिए वो है प्रेम। हम भगवान से जुड़े, भगवान से जुड़ेगा मतलब हम भगवान से प्रेम करें। ये प्रेम हमारे अंदर भगवान के लिए स्वाभाविक है, नेचुरल है, लेकिन दबा हुआ है। एक चिंगारी में आग पूरी होती है लेकिन दबी होती है, जब ये चिंगारी भूसे पे पड़ती है तो पूरा आग बन जाती है। हमारे अंदर भी भगवान से प्रेम करने की चिंगारी है लेकिन हमें भूसे पे गिरना है। इस चिंगारी से आग बनाने का काम कौन कर सकता है, यही कार्य करने के लिए संत महात्मा यहाँ आते हैं। आप बड़े भाग्यशाली है कि आज सीता जी का जन्म स्थान देखना एक बहाना और आप लोगों पर कृपा करना उनका मुख्य कार्य है। आज इस चीज से आप अपने को वंचित मत करना, महरूम मत करना, उनकी कृपा जरूर ग्रहण कर लेना, क्योंकि ऐसे महात्मा आकर हमारे अंदर भगवान का सोया हुआ प्रेम जगाते हैं। इसलिए यदि हम भजन नहीं क्या है, सेवा करना, किसकी सेवा करना, हम लोग आज किसकी सेवा करते हैं, जो कुत्ते रख लेते हैं कुत्ते को टट्टी कराने के लिए बाजार जाते हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं, कुत्ते की। मैंने विदेशों में देखा कि वो साथ में कुत्ते को ले जाते हैं और कपड़ा हाथ में रखते हैं, जैसे ही वो टट्टी करता है तो नीचे उसको पकड़ के फिर उसको फेंकते हैं। इतनी घिनौनी सेवा करते हैं और कहते हैं हम कुत्ते के मालिक हैं। हम जिसके भी इस दुनिया में मालिक बनते हैं सेवा करते हैं, तो भैया उसकी सेवा करो जो सेवा कराने के योग्य है, उसे ही भगवान कहते हैं। वो भगवान कोई नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण है। हम भगवान की सेवा करें इसे ही भजन कहते हैं। हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम हमेशा के लिए आनंद में रहेंगे, क्योंकि ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। फिर हम इस देश में नहीं आएंगे, इस दुनिया में नहीं आएंगे जो कष्टों से भरी है। एक आदमी कितना भी सुखी क्यों ना हो, गुरुदेव बतलाते हैं बुढ़ापा जरूर आएगा। कितना भी सुखी क्यों ना हो, उसे रोग जरूर लगेगा, और कितना भी सुखी क्यों ना हो, मृत्यु जरूर आएगी। मृत्यु का मतलब समझते हैं, आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं और उसमें कह दिया जाए कि आप बम पड़ाए कभी भी फट सकता है, आप बताओ उस हवाई जहाज की यात्रा में कितना आनंद ले सकते हो। ऐसे ही हमारी इस यात्रा में मृत्यु का बम पड़ा हुआ है, किसी भी क्षण फट सकता है, हम कितना इसमें आनंद ले सकते हैं। इस संसार में, इस जीवन में कितनी भी परिस्थितियां अनुकूल क्यों ना हो जाए, सुख नहीं है, नहीं है। इस संसार को बनाने वाला ये कहता है, भगवान कृष्ण कहते हैं सुख योनि एव से, ये संसार दुखों का घर है, अशाश्वत है, यहाँ सुखी नहीं रह सकते हैं। रहना नहीं ये देश वीराना है, रहना नहीं ये देश कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं ये देश झाड़ और झाकर आग लगे जल जाना है। आइए चलिए वहाँ जहाँ हम रह सकते हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में कृष्णा रहते हैं, हम कृष्ण के पास जाएं, ये तभी संभव है। हम ऐसे गुरुदेव की शरण में गौर देना मिले।
बहुत सुंदर, समय आज से 5,500 वर्ष पहले भारतवर्ष में नमिषारण्य क्षेत्र में 60,000 ऋषि वहां पर उपस्थित हुए और विचार करने लगे, कलयुग आ गया, कृष्ण प्रकट हो गए, कलयुग आ गया, इसमें पुरुषों का धर्म बदल जाएगा, स्त्रियों का धर्म बदल जाएगा, स्त्रियां अपने पति को छोड़ करके डाइवोर्स देंगी, पति भी डाइवोर्स देगा, 20-25 विवाह करेंगे तो भी कोई आनंद नहीं मिलेगा, पुरुष लोग भी अपना धर्म छोड़ करके अधर्म पथ पर चलेंगे, यहाँ तक कि जो घर बार छोड़ करके सन्यासी भी हुए हैं उनका इतना वैभव, इतनी बड़ी कोठी जो कि साधारण गृहस्थों को लाभ नहीं है। ऐसे ऐसे कलयुग का धर्म बदल जाएगा, कभी हो सकता है कि स्त्रियां अपने बच्चों को मार दे, पति स्त्री अपने पति को मार दे, अपने बच्चे को खा जाए, ये भी स्थिति आएगी। इसलिए सोचने लगे ये क्या करना चाहिए। उसी समय हठात सुखदेव गोस्वामी के शिष्य सुत गोस्वामी वहां पर उपस्थित हुए, ऋषि लोग उठ खड़े हुए, अभिवादन किया और उनसे कहा, जब बैठ गए आराम से तो उनसे प्रश्न किया, कलयुग आ गया, अब बहुत विकट समय आने वाला है, आप अपने गुरु के निकट, सुखदेव गोस्वामी के निकट वेद शास्त्र पुराण सब कुछ, यहां तक कि भागवत भी सुना है, इसलिए कलयुग की आयु कम है, धर्म के तरफ में रुचि नहीं लोगों की, साधारण से बड़े भाग्यहीन हैं, करते हैं अच्छे के लिए हो जाता है बुरा। आप शास्त्रों का निचोड़ क्या है, हम श्रद्धा पूर्वक आपसे पूछ रहे हैं, हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा। जयात्मा संप्रसीदति, आत्मा कैसे प्रसन्न। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं शरीर हूं, मैं कैसे खुशी रह सकता हूं। सबसे प्रथम पहिए जानिए, मैं शरीर नहीं हूं, इस शरीर के अंदर में आत्मा और परमात्मा, आत्माएं एक एक शरीर में एक और अलग अलग, और परमात्मा कृष्ण साक्षी के रूप में, परमात्मा के रूप में एक होकर के भी सब में व्याप्त है। जब तक जीव भगवान को भूल गया है और शरीर को ही सर्वस्व मान कर, ये मैं शरीर हूं, जो कुछ कमाता है शरीर के लिए, पालन पोषण के लिए, आत्मा के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो उसकी आत्मा कैसे सुखी होगी। इसलिए इन्होंने प्रश्न पूछा, आत्मा प्रसीदति, आत्मा कैसे प्रसन्न। और तब इसके उत्तर में अपने गुरु को प्रणाम कर, प्रणाम कर इसका उत्तर देने लगे। सवई पुंसा परो धर्मो जतो भक्ति रथोखजे अहे तुक्क अव्यवहिता जयात्मा संप्रसीदति। मनुष्य मात्र का, मनुष्य मात्र का ही नहीं, प्राणी मात्र का निश्चित रूप में परम धर्म है कि विश्व ब्रह्मांड के सृष्टितों के सृष्टा हैं जो, उनके भी ऊपर वाले भगवान कृष्ण में अहेतु की भक्ति हो। इस अहेतु की भक्ति से ही आत्मा का कल्याण होगा। अहेतु की मैंने कोई भी जिसका कारण है लौकिक किसी कुछ मांगने के लिए भक्ति न हो, कर्म ज्ञान के अधीन भक्ति न हो, और नैरंतर जमई तल धारावत अविच्छिन्न गति से भगवान के चरणों में लगे। इसी भक्ति को हमारे रूप गोस्वामी ने महाप्रभु की कृपा से एक श्लोक में भक्ति की परिभाषा ऐसी सुंदर दी है, जितनी भी शास्त्रों में पुराणों में भक्ति की परिभाषा दी गई है उन सबको क्रोड़ीभूत करते हुए, एक सबको लाते हुए, और उन्होंने अद्भुत श्लोक बनाया, परिभाषा दी भक्ति, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आद्यनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुद्रम। अन्नाभिलाष भक्ति के यहां पर दो लक्षण बतलाए गए, एक प्रधान एक गौण। प्रधान लक्षण क्या, अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम और गौण दो अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। अब इसको जरा समझिए, भक्ति ऐसी तैसी नहीं है जो नाम करने से ही भक्ति हो जाएगी। इसलिए तत्वज्ञ जो गुरु हैं, समस्त शास्त्रों का सार जानते हैं, भगवान की अनुभूति है और संसार से परम विरक्त हैं, जो समस्त शिष्यों के सारे संदेहों को दूर कर सकते हैं अपने विचार से, वो सदगुरु हैं, उनका चरणाश्रय किया जाए, उनकी सेवा की जाए, तब भक्ति ये होती है। शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है, एक श्लोक है जो पूर्व जन्म संचित ही भक्ति तो भगवत संगीन परिजन, भगवत भक्ति ऐसे नहीं है भक्तों के संग से, किंतु भक्त भी सुदुर्लभ कली काल में है। वे भक्तों का मिलना भी परम दुर्लभ है, और कैसे मिलेगा, कोटि कोटि जन्मों की भगवत भक्ति संबंधी सुकृति के द्वारा ऐसे नहीं मिल जाएगी। तो करें अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल रूप से कृष्ण को जो प्रिय लगे, टू प्लीज कृष्ण, व्हाट एवर यू डू टू प्लीज कृष्ण, जो कुछ भी करते हो कृष्ण के प्रिय के लिए, प्रसन्नता के लिए करो। अब यहां पर एक विचार है, प्रसन्नता के लिए क्या करो, अपनी काय की, शरीर की, मन की और वचन की जितनी प्रकार की भी चेष्टाएं हैं, और इसके अतिरिक्त इनसे भी ऊंचा मन की, आत्मा की जो भावनाएं हैं, वो दो प्रकार से लगे, एक तो कृष्ण के अनुकूल और दूसरा क्या, जो कृष्ण के प्रतिकूल हो वो न करें। जैसे मांस मछली ये सब प्याज लहसुन खाना और भक्तों का संग करना, इसे भक्ति नष्ट हो जाए। विशेष करके मायावादी, बौद्ध, जैन ये सब जो है, इनका संग करने से निरीश्वर है, भगवान और वेद शास्त्र नहीं मानते हैं, इन लोगों का संग नहीं करना चाहिए। और अनुकूल रूप से कृष्ण की सेवा, काय की जो कुछ हम शरीर से करते हैं, मन से जो कुछ सोचते हैं और वचन से जो कहते हैं, वचन से सब समय कृष्ण की लीला कथाओं का गान, काय की मैंने शरीर से भगवान का को प्रणाम करना, शिव विग्रह को, भक्तों को प्रणाम करना, उनका आदर करना, और तन मन और मन से, मन से जितनी क्रियाएं हो भगवत भक्ति के अनुकूल, तो ये भक्ति होगी। अब इसको समझाने के लिए कह रहे हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भगवान की भक्ति होनी चाहिए, और भगवान की प्रसन्नता नहीं है तो नहीं करना चाहिए। इस लक्षण में कुछ व्याप्ति अव्याप्ति का दोष है। व्याप्ति माने क्या, जैसे कृष्ण ने माखन चुराया और मटकी को तोड़ दिया, यशोदा मैया को क्रोध आ गया और लठिया लेकर के उसके पीछे दौड़ी और उनको पकड़ लिया, मारू चोर का बंधु, चोर इत्यादि कहने लगे। कृष्ण मैया मुझे मत मार, और रोने लगे। जब डंडा लेकर के मारू तो वो पीछे की तरफ, मैया मत मार, मैया मत मार, और आंखों से आंसू झरने लगे। तो ये कृष्ण की तो प्रसन्नता हुई नहीं, तो ये भक्ति कैसे हो गई? इसलिए यहां पर चिंता करनी चाहिए। नहीं, यशोदा मैया कृष्ण को कौन है? सृष्टि स्थिति प्रलय करने वालों के भी ऊपर वाले, स्वयं ऐश्वर्य और माधुर्य के निलय श्री कृष्ण है। ऐसे भगवान को और लठिया लेकर के डर दिखला रही है, मारू, और वो रो रहे हैं, न मैया मुझे मन मार। तो ये क्या हुआ? भक्ति कैसे हुई? नहीं, ये भक्ति हुई। कैसे भक्ति हुई? इसलिए भक्ति हुई कि यशोदा मैया जो कुछ करती हैं कृष्ण के भला होने के लिए। या भी चोरी कर रहा है, और जब बड़ा होगा तो बड़ा चोर निकलेगा, तो फिर ये हमारे वंश का नाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए इसको अच्छा बनाने के लिए मार रही है। भावना उनकी उन्नत है। एक समय एक चोर था, पकड़ा गया, उसे फांसी का दंड हो गया। तो फांसी का दंड के दिन में लोगों ऊपर वाले ने पूछा, जो तुम क्या चाहते हो, अंतिम तुम्हारी क्या इच्छा है? आप तो मां से भेंट करना चाहता हूं। अच्छा, तुम तो मां को बुला दिया। जब बुला दिया तो उसने मैया का नाक मुख से काट लिया। कहे ये कहूं तो बचपन में मैं चोरी करता था, यदि मैया हमारे को डांट कर पड़ती तो मैं चोर नहीं होता, इसके वजह से मैं बिगड़ा। तो उसी तरह से यहां पर भी समझना चाहिए। यशोदा जी कह रहे हैं, तुम जो कुछ हो मैं तुम्हें दंड दे करके रहेंगे। यह दंड देना भक्ति का, और एक अव्यक्ति का दोष। अव्यक्ति मैंने क्या? कृष्ण मथुरा आए ब्रज से, अखाड़े में चारुण मुष्टिक ताल ठोक करके कृष्ण से भिड़ गए। वहां की स्त्रियां कहने लगी, और ब्रज गोपियां ही धन्य है, इस सभा में हमें वो कृष्ण का सब समय सुंदर मुखारविंद हंसते हुए दिखती हैं, मुस्कुराते, और हम लोग यहां देख रहे हैं कृष्ण लड़ रहे हैं, चारण मुष्टिक इनको जान से मार डालने के लिए लड़ रहे हैं। श्वेत की बूंदे मुखारविंद पड़ी है। उस समय में कृष्ण ताल ठोक करके लड़ने लगे, और बलदेव जी चारण मुष्टिक से उनको आनंद हुआ कि आज बहुत दिनों के बाद मुझे बिरला सहस्वादन करने का मुझे मौका मिला। बड़े प्रसन्न होकर के लड़ रहे हैं। यहां कृष्ण को तो प्रसन्नता हो रही, किंतु ये भक्ति के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। इसलिए कृष्ण की प्रसन्नता भी यहां पर कृष्ण को मार डालने के लिए वो चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए वहां पर प्रसन्न होना यह भक्ति का लक्षण नहीं है। इस तरह से अनुकूलन। अब चलिए गौर लक्षण, अन्नाभिलाषिता शून्यम। यहां पर अन्नाभिलाष ना कह करके अन्नाभिलाषिता, अन्नाभिलाष हम हो नहीं सकते, संभव नहीं, इसलिए अन्नाभिलाषिता का। द्रौपदी कौरवों की भरी सभा में, जहां भीष्म पितामह, जहां पर कि अंधे धृतराष्ट्र, पांचों पांडव, कर्ण, शकुनि इत्यादि भरे पड़े थे, दुशासन दुर्योधन के आदेश से उनको नंगा करने लगा और दुर्योधन की गोदी में बैठाएगा। उस समय में जस द्रौपदी पुकारने लगी कृष्ण को। कृष्ण उस समय में द्वारका में थे। कृष्ण कुछ छटफट करने लगे। रुक्मिणी ने पूछा, आज बड़े अशांत दिख रहे हैं, क्यों? एक भक्त पर भीड़ पड़ी है, मैं जाना चाहता हूं। तो जाइए, चले जाइए, कुछ गड़बड़ी है अभी। द्रौपदी अंचल को मुख में देकर और सोच रही है, ये इसी से दबाया, यदि बच जाऊं। डूबते हुए को तीन का सहारा होता है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। जब देखा जी अब तो कोई उपाय नहीं है, तो हाथ ऊपर उठा दिया, अंचल दांत से छोड़ दिया। हे हे गोविंद राखु शरण, अब तो जीवन हारी। हे गोविंद, अब मेरी रक्षा करो, दांत से अंचल। और उसी समय कृष्ण पहुंच करके साड़ी बन गए, और ऐसा कि दुशासन का 10,000 हाथियों का बल भी थक गया, और वो साड़ी खत्म नहीं हुई। यहां पर देखा जाता है कि तो ये तो कुछ मांगती हैं। प्रहलाद महाराज को देखिए, नृसिंह भगवान ने कहा जी कुछ मांगो, मुझे आने में विलंब हो गया, मांगो कुछ। उन्होंने कहा, मैं बनिया नहीं हूं जो कुछ मांगू, मेरी भक्ति इसलिए नहीं है कुछ मांगू और आप दें और मैं आपकी भक्ति करूं। आप दीजिए यही बल कि यदि हमको मांगने की कोई अभिलाषा भी है तो भक्ति समाप्त हो जाए। यदि प्रहलाद महाराज ऐसे, किंतु द्रौपदी ने क्यों किया? अस्वाभाविक स्थिति में, इसलिए अन्नाभिलाषिता कहा गया। स्वाभाविक स्थिति में उसने कुछ नहीं मांगा, किंतु अस्वाभाविक में स्वभाव बदल जाने के बाद में किया, इसलिए इसको अस्वाभाविक। और ज्ञान कर्माना प्रीतम, बिना कर्म किए हम एक सेकंड नहीं रह सकते, कर्म करना ही होगा। खाना कर्म है, ये तो खाना ही होगा। श्वास लेना कर्म है, किंतु जो कुछ कीजिए भगवान के लिए। खाइए किस लिए? भगवान के लिए, भगवान का को अर्पण करके और भगवान के लिए खाइए। किस लिए? कैसे खाइए? मैं खा करके हमारा जीवन रहेगा तो कृष्ण की सेवा करूंगा, ये भक्ति हो गई। इसी तरह से जो कुछ भी करें भक्ति के अनुकूल करें। और ज्ञान, बिना ज्ञान के भी रात है, दिन है, क्या है, ये सब ज्ञान होना चाहिए। एक ज्ञान होता है मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसी भावना अद्वैतवाद कहलाता है। बौद्धवाद, ओ जगत शून्य है, हम भी शून्य है, जगत झूठा है, कुछ नहीं है, शून्य में मिल जाएंगे, ये सब ज्ञान नहीं। तत्व ज्ञान, कृष्ण तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, हमें भजन किस लिए करना चाहिए, ये सब है। इसलिए ऐसे ज्ञान, और इसी तरह से भगवान की लीला कथाओं के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। शतांग प्रसंगम वृज संविदौ भवंत रित कर्ण रसायना कथा तजोसनाथ आशु अपनी सदा रति भक्ति। साधुओं के अनुगत्य में वहां पर हरि कथा हो रही है, कृष्ण की लीला कथाएं हो रही है, उसको श्रवण करने से, उसको दंडवत प्रणाम करने से, जो आयोजन कर रहा है उसके लिए प्रणाम करें, कथा वाचक को प्रणाम करेंगे, श्रोता को प्रणाम करेंगे और लीला कथाएं सुनेंगे, उसे अपने आप तत्व ज्ञान जो कुछ है सभी कुछ हो जाएगा। अब ये उत्तमा भक्ति क्रमानुसार भक्ति के तारतम्य से पांच भागों में विभक्त है। पहला ज्ञानमयी भक्ति, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त, प्रेमार्पुर भव। अब इसको समझिए, पहले हैं ज्ञानी भक्त, कौन? प्रहलाद महाराज। आप हिंदी में प्रहलाद महाराज जी का चरित्र कुछ सुनाइए, खूब संक्षेप में जो बोल सके। ये ऑस्ट्रेलिया कराने वाले हैं, अंग्रेजी ही केवल जानते हैं, किंतु हिंदू यहां भारत में आकर के इन्होंने थोड़ा बहुत हिंदी प्रैक्टिस किया है। कुछ गलत भी हो तो आप लोग इनके अर्थ को समझ लेंगे।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले थे जो मांस को पराजित है, स्वीकार करें और गुरु जी जो सब बोले सच बोले। मेरे हिंदी भी इतना अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोग बोली है आपकी हिंदी भी इतना अच्छी नहीं है इसके परास्पर विवाद हो जाएंगे। इसलिए गुरु जी आदेश दिया है थोड़ा प्रहलाद महाराज के जीवन चरित्र इसको संक्षेप में वर्णन करना। प्रहलाद महाराज ज्ञानी भक्त, आज और कल हम सुनेंगे पांच प्रकार के भक्त। आप लोग जानते हैं प्रहलाद महाराज का महिमा अपार, वो ज्ञानी भक्त किसने है इसका कोई जीवन दाता और ये जीवन दाता को पूरे ज्ञान है, वो पूरे विश्वास है मैं भगवान का आश्रित हूँ, इसने कोई भौतिक इच्छा नहीं है। वो संक्षेप में बोलेंगे, आप लोग देखेंगे यह भागवत को सप्तम स्कंद पूर्व चरित्र उसमें उपस्थित है। प्रहलाद महाराज के पिताजी उसके नाम किरानी काशिपु और विशाल असुर मानी दैत्य असुर थे, और ये पूरा विश्व को पूरा विश्व को मालिक था, इतना शक्तिशाली और इंद्र देव ने उनको भी परिचित कर दिया। लेकिन प्रहलाद महाराज उनका असुर जन्मा लेना होने पर भी असुर नहीं थे, परम भागवत भक्त थे। जैसे कभी कभी एक टुकड़े का सोना, सोने का टुकड़ा बाथरूम में टॉयलेट में देखते, क्या हम नहीं उठेंगे? उठेंगे। कभी कभी भगवान का हम इच्छा से कुछ कभी बात असुर को में जन्म लेते हैं ये पार्थिव महिमा को प्रकाशित करने के लिए। तो प्रहलाद जी महाराज उनके गुरु को पढ़ गया, उनके गुरु शिक्षा शिक्षा संदा उमा और अमार का ये दोनों बृहस्पति का शुक्राचार्य को दोनों बेटा, और गुरु को गया और वापिस आने के बाद और छुट्टी के समय आपने पीटी जी हरानी काशी को प्रहलाद महाराज गौर पर बैठा और बोला, बेटा तुमने स्कूल में है ना, सबसे अच्छा शिक्षक क्या आप मिला? और प्रहलाद महाराज ये बोले, तत्सारु माने सूर्य बाज दे ही मां सदा सूर्य विद्या प्रिया सत्य हाथ हिम्मत में पातरम गृह मां अंत को पान बानाम करो यदम हरिमास्त्रे। प्रहलाद महाराज इतना विश्वास है भगवान को बात आपने पिता जी से नहीं डरते, सर्व के स्वभाव के है सच कौन है, ये लोग मानते हैं या नहीं मानते ये आपका पीछे का अनुसार, लेकिन सर्व सब समय कल्याणकारी बात करते। तो तत्सारु मन्ये और जो हम सारु से सुना श्रेष्ठ चीज क्या है जो गृहा अंधकूपा में रहते हैं माने जैसा बीवी बच्चे के साथ अशाक्ति के साथ जो रहते हैं ये एक अंधकूपा अंधकूपा समझ गया डार्क होल जो उसमें उपस्थित है सब समय चिंतित है बीवी का चिंता पैसे कहाँ से आ रहे बच्चे की बीमारी है इसलिए सब समय असाब चिंता में मन में लग्न हुआ है इसलिए सब समय टेंशन में भगवान के ध्यान नहीं हो सकते जो श्रेष्ठ विद्या शिक्षा क्या है ये सब को त्याग करते पूरा हरि को आश्रय करना और सब संसार संसार से विराग होना ये सबसे अच्छा शिक्षा पुरानी काशी को सुनकर के बहुत बार प्रबल हो गया ना ना वो हंसने लगे ना वो हंसने लगे सबसे ज्यादा बच्चा ऐसा बच्चा यस नो वेरी गुड बोलते वो बच्चे कुछ ज्ञान दे ऐसा बोलते इसलिए पिता जी हंसने लगे और ध्यान नहीं दिए ये क्रियानंद कुमार क्या है गुरी वो बहुत अच्छा सुनना उदाहरण देते एक बार एक आदमी जादू में रहते थे उनके पीछे एक सिंह आया खाने के लिए उनके पीछे दौड़े और यह आदमी भय के कारण दौड़ने लगे और एक अंधकूप में गिरा जब गिरने लगे एक साधु को पकड़ लिया
टहनी को डालियों को
पेटे डाले को पकड़ लिया किसने अंदर जाकर ये सांप कुछ कहा वो ऊपर कौन है ये सिंह माने ऐसे काम है आ जाओ भाई मैं तुमको खा लूंगा ये सब उपाय मृत्यु नीचे मृत्यु कहा जाएंगे इतना मन का स्थिति और ये पेड़ का ताले आप साइड से आया हुआ है और दो चुहा एक काला चुहा एक सांपी चुहा ये वृक्षों काटने 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 माने किसी समय नीचे जरूर हो जाएंगे मृत्यु राम नाम सत्य हो जाएंगे तो क्या करेंगे इतना भयान के अवस्था में होने पर भी उसके ऊपर कुछ माखी का मधुमक्खी का गा
छत्ता छत्ता बना लिया था उसे मधु टपक रहा
उसने नीचे मधु आ रहे और क्या करेंगे चीप उठाया बस एक दो बिंदु मधु पाया उसे इतना सब दुख को भूल गया सजन आहा इसमें कितना स्वाद है कितना अच्छा है
कितना मधुर है
कितना मधुर है इसमें कितना आनंद है देखो ये हमारा अवस्था है मृत्यु आने वाला है लेकिन हम भूल चुके हैं आज होंगे ये कल होंगे ये 10 साल बाद ये 50 साल बाद लेकिन एक चीज सत्य है हमारा मृत्यु आने वाला है लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं किसलिए कुछ मालूम है इस जगत में बहुत छोटा सा ये मालूम क्या है मानी जो स्त्री के साथ जो मिलन जो आनंद है ये बिंदु माने मालूम का बिंदु जीवोताते हम पीते सब हमारा दुख को भूल जाते
ये मधु क्या है
और जब विषायक अशक्ति जो है जैसा हम दिन रात काम करते गांव को वापस आने से वो भी एक दो मीठा ही वाचन करते छोटे छोटे सा बालक मम्मी पापी पापी नहीं पापा पापा कैसे हो हमको एक चौकी दिला दो ये मीठा ही वाचन सुन करके हमारे जितना परिश्रम जितना दुख जो सारे दिन जो हुआ भूल जाते ये हमारा स्थिति है ये कालो साफी चुहे क्या है दिन और रात हमारा आयु को ले लेते हैं ले लेते हैं ले लेते तो ये क्रिया अंत कुपा जो इसको पूर्व को परित्याग करके एकांतिक हरि श्री हरि को आश्रय ग्रहण किया ये सर्वश्रेष्ठ विद्या ये चूज हम ये चीज हमने शुरू हुए स्कूल में और पिता जी हास्य पूरे ध्यान भी दे किसने हरानी काशी को बिल्कुल विष्णु को बलोली थे उसके पूर्व जन्म आप इतिहास अभी था नहीं लेकिन भगवान के बिल्कुल बलोली थे और रानी काशी को हास्य लगी फिर प्रहलाद को स्कूल को भेजे मैंने कुछ महीने बाद प्रहलाद जी वापस आए और फिर रानी काशी को उसके गौरी पर बैठा और पूछा प्रहलाद जी सबसे श्रेष्ठ विज्ञान क्या सीखा? उपराजी तरंगों ने श्रावणम कीर्तनम विष्णु स्मारणम बाल सेवनम आचनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु वक्तिश्चन्नावलक्षणम प्रीति पार्वती आदा मानिकित आदा उत्तमम। हे पिति जी, जो विष्णु का आश्रित करके दो विष्णु है, कोई बोल सकते है क्या बात है दो विष्णु कैसे आ गए? हम तो सब समय सुना गॉड इज वन, लेकिन जब ऐसे बोलते गॉड इज टू। विष्णु दो प्रकार के विष्णु, एक विश्राय भगवान विष्णु श्री कृष्ण जो है, और एक आश्रय भगवान। आश्रय भगवान कौन है? गुरुदेव सदगुरु विष्णु भक्ता। जैसे कृष्ण विश्राय भगवान, राधारानी कौन है? राधिका आश्रय भगवान। राम जी भगवान है और सिंह जी कौन है? आश्रय भगवान। समझ गए? इसे जो गुरु सदगुरु का पारा पाराश्रय को ग्रहण करके जो हरि को उपासक करने वाले, कैसे विष्णु का सेवा कैसे होंगे? नौ प्रकार का सेवा, ये नवविध भक्ति कहलाते हैं। श्रावणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, आप लोग समझ सकते हैं। आचनम वंदनम, जो ठाकुर जी को वंदन करते हैं। दास्यम, जैसा हनुमान सब समय दास्य भाव में सेवा करते हैं। पाद सेवनम, जैसा लक्ष्मी सब समय श्री विष्णु के चरण कमलों को सेवा कराते हैं। साख्यम, अर्जुन जैसा भगवान के साख्य हो गया। और आत्मनिवेदनम, बाली महाराज जैसा। ये नौ प्रकार का भक्ति जो कराते कृष्ण का प्रीति प्रदान के लिए, जैसे गुरु जी बोला बिना मैंने अहोत की भक्ति के साथ, बिना कोई कारण, बिना मानने गुरु का आश्रय करके, ये सबसे श्रेष्ठ विधि। सुन करके राधिका सिंह बहुत क्रोध हो गया। क्या बोल रहे हो? हमारा साधु विष्णु का कह गुरु, अरे बहुत क्रोध हो गया। इसके बाद
मोर ब्रीफ, यू विल हैव टू मेक एंड।
और लंबी कहानी है, टाइम भी नहीं है, मेरी हिंदी भी इतनी नहीं है, इसलिए रानी काशी को सुन करके बहुत क्रोधित है।
पूछा जाए तुमको किसने सिखलाया? बोलो मतिर ने कृष्ण है पर
तुमको ये शिक्षा कहाँ से मिला? वो प्रामाणिक बिना इस पिताजी से नहीं बातें किसे जानते? मैं आत्मा हूँ, मैं इससे नहीं हूँ, इसे कोई के कारण क्या? मतिर कृष्ण परतो स्वतो वा विधो विधो अभिपाति ते गृहा प्रतनम अदांत को वीर सतम तमिश्वाम पुना पुनश्चावित चापनम। प्रारम्भ ये बोले पिता जी आप समझ नहीं सकते, इसलिए आप अजिंद्रिय हैं। और जब अजिंद्रिय है भगवान की सेवा नहीं कर सकते। जितने उपदेश श्रवण होने पर भी, जितना चेष्टा होने पर भी और दोनों मिलन होने पर भी भगवान सेवा नहीं कर सकते। तुम लोग विषय लोग क्या है? पुनः पुनश्चावित चावनम, जैसे ये क्या है? जैसे एक समय एक खुद जाता है, खुद समझ गया दो, और भूख लगी है एक हानि को निकालो। ये बहुत सुख सुख हुआ है, इसमें कोई रास नहीं है। और सर ये हानि 50 साल का हुआ और ये खुद निकाला, भूख में डाला और ऐसा चुम्बन 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 कराने से ये हानि उनके मुख को काटा, कुछ के मुख से कुछ खून निकाला और कुदा चुम्बन चुम्बन कराने से मतलब चिस्त लागी आपने खून को पीते है। सच है हानि बाबा, इस हानि में कितना अच्छा रास है, कितना स्वाद है। और 50 दूसरे खून करते हो, अरे उनके पास एक हाड़ी है, मेरे पास नहीं हड्डी। और ये खून के पीछे मैंने आक्रमण करने लगे और 50 खून इसको खाता, खून में चलने लगे और बाद में ये हाड़ी को फेंक दिया मुख से, उसको बहुत शांति मिला। और क्या किया दूसरा खून था, ये हाड़ी को पकड़ लिया वो चलने लगे और 49 को पीछे आ गया। ये संसार देखो, हमारा माता पिता कितना दुख पाए, आप लोग जानते आपके माता पिता कितना परिश्रम किया हमको बनाने के लिए, कितना दुख, कितना चेष्टा, कितना मरी, क्या बोलो, बहुत परिश्रम किया। और आपने माता पिता उनके लिए भी किया, हमने माता पिता हमके लिए किया, कितना दुख कितना मिसरी कितना सफरिंग इसमें, लेकिन लास्ट में माता पिता क्या बोलते, लेकर तुमको शरीर आना, समझ गया? ये लोग इनको दुख पाया, उनके बच्चों को ऐसे करा दी, तुम भी ऐसे शरीर आना, ये पूर्ण पूर्ण स्थापित चाविनान नाथ विधु स्वाति कथम हि विष्णु दुरस्या वही नाथ मानिनास अंदर यहां दिए उपनीय माना तभी किसी तत्व किसी बात का नाम ना। और पीजी जी आप विष्णु का बाहर हो गए, इसलिए जो शास्त्र का अभ्यास करें आप था आप समझ नहीं सकते, आप लोग क्या है अंधेर या तंदी उपनीय माना, एक अंधा है वो देख नहीं सकते, उनके पीछे चार पांच और अंधा है ऐसा पता लगे, और ये अंधा जो गुरु है वो कुआं में गिरते हैं, उनके सब शिष्य भी ऐसे गांधी हो जाएंगे। आज का अलीकान सालू ये क्या है अंधा, आप भी देख नहीं सकते ना, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण देख सकते ना, आप लोग भगवान के साथ क्या संबंध है देख नहीं सकते, इसलिए ये सब अंधा है। और जो उनका अनुज्ञाति में आ रहे ये भी अंधा है। इसे संक्षेप में बोलोगे प्रणाम कौन सा भी उपदेश दिया उसके पीछे इसको मानने के लिए बहुत चेष्ट किया, लेकिन कृष्ण को मारो के कृष्ण राके मारो के तो कृष्ण को राक्षस के जो कृष्ण राक्षस करेंगे इसको कोई हानि नहीं हो सकते, इसलिए बड़ा इसके पीछे इसको बीस करा दिया तलवार से मानव चेस्ट किया बहुत सारे किए, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उसके पीछे जी बहुत क्रोधित हो गया, प्रहलाद तुम्हारे इतने शांति कहाँ से आए, उसके नाम विष्णु वो कहां पर है हम देख नहीं सकते। प्रहलाद जी ये उत्तर दिया पीटी जी हो सके आपके शास्त्र को कमजोरी है, भगवान को देखना क्या चाहते भक्ति चाहते ना भक्ति मां मत जाना थी आपके पास भक्ति नहीं है भगवान को कैसे देखा सकते हैं। और गुस्से हो गए अभी लास्ट में
मैं बोलते हैं उनके गुरु का नाम प्रहलाद महाराज जी का नाम था षंडामर्क, षंड माने सांड, हरी हरी फसलें खाता है और टट्टी करता है पतली पतली, उसकी टट्टी गोबर भी किसी काम में नहीं आती, और अमर्क माने अंधकार, जिनको तत्वज्ञान रूपी ज्ञान नहीं हुआ है प्रकाश नहीं हुआ उनको कहते हैं। ऐसे दो गुरु के पास में जाने से क्या मिल सकता है, ये अपना भी कल्याण नहीं कर सकते दूसरों को भी कल्याण नहीं कर, जब तक कि भगवत भक्तों की चरण की रेणु से अभिषिक्त नहीं हुआ जाए तब तक जीव को शांति नहीं मिलेगी और उस पर वो नित्य रूप में कृष्ण की सेवा नहीं पा सकता है। इसके बाद में हिरण्यकश्यप को मारने की बहुत चेष्टा की, अंत में फिर गुरुकुल उभय में भेज दिया। एक दिन स्कूल के टीचर दोनों संडामर्क कहीं घर के काम से दूसरी जगह गए, प्रहलाद महाराज जी बच्चों को उपदेश देने लगे, कुंभार आचरित प्राज्ञों बचपन में बुद्धि कोमल होती है इसलिए बच्चे अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए, जब बच्चे के समय से क्यों, क्योंकि कब तक जीवन है कोई नहीं जानता, कोई पेट ही में मर जाता है, कोई जन्म लेने के बाद में मर जाते हैं, कोई 125 वर्ष तक जीवित रहते हैं, अपने अपने पूर्व जन्म कर्मों के अनुसार में होगा। और देखो बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए, न तब प्रयासों कर्तव्य जत आयु वह परम, केवल घर गृहस्थी में लगे रहने और सुख चाहने के लिए पैसा कमाने के लिए चेष्टा करो ये मत करो, अपने आप यदि दुख बिना बुलाया सुख भी आ जाएगा। बच्चों ने पूछा कि आपने ज्ञान कहां से सीखा, तो उन्होंने नारद जी से हमने सीखा है। क्या सीखा, तो उन्होंने गुरु सुश्रेणम, गुरु की सेवा करो, भगवान का ही भक्त जान करके, भगवान का स्वरूप जान करके गुरु की सेवा करो और भगवान का भजन करो, इसलिए तुम्हारा योजना। सब भक्त लोग, बच्चे जितने थे प्रहलाद महाराज के साथ में कीर्तन करने रहे, कीर्तन की का स्वर हिरण्यकश्यप सुन करके दौड़ा आया और कहा, जैसे किसके बल पर हमारी आज्ञा का उल्लंघन करते हो। उन्होंने कहा, तुम में हम में खड़ खम्भ में सर्वत्र वो व्याप्त है, इस खम्भे में है, देखे तो आकर के तुम्हारी रक्षा करे। ये कह करके मुष्टिकाघात किया और करते ही निसिंह भगवान निकल करके और उसके नखों से विदीर्ण कर दिया। न दिन में, न रात में, शाम को, न किसी महीने में, न किसी वर्ष में, लीप ईयर में, अधिक मास मल मास में, और आकाश में नहीं, पृथ्वी पर नहीं, पाताल में नहीं, अपने जंघे पर ले लिया, और किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, नखों से ही, और मनुष्य अथवा सिंह इत्यादि नहीं, नी सिंह और मनुष्य, ये दो रूप से उसका खिलाफ है। प्रहलाद महाराज जी को रक्षा करने के लिए आए। ये प्रहलाद महाराज जी सर्वत्र भगवान को दर्शन करते थे और अपने इष्ट देव के सबके हृदय में देखते थे और सबको भगवान में देखते, इसलिए ये ज्ञानी भक्त हैं। महाराज अम्बरीश शुद्ध भक्त हैं। एकादशी के बाद में द्वादशी के दिन में पारण करना था। महर्षि दुर्वासा उनके पास में पहुंचे, इन्होंने कहा, ये निमंत्रण आपको है। उन्होंने निमंत्रण दिया, अच्छा अच्छा मैं जमुना में जा रहा हूं, स्नान करके आ रहा हूं। जानबूझ करके विलंब कर दिया, पारण का समय जाने लगा, तो उन्होंने चरणामृत का जल थोड़ा सा पान करके और उनके लिए प्रतीक्षा कर, वो जान गए महर्षि दुर्वासा, तुमने हमको निमंत्रण दिया, बिना खिलाए अपने खा लिया, बस जटा से कृत्या रक्ष से निकाल करके फेंका, दौड़ी उनको जलाने के लिए। और उसी समय में भगवान का चक्र उसे जला करके कृत्या राक्षसी को और ऋषि के पीछे पीछे दौड़, ब्रह्मा जी के पास में गए, शंकर के पास में गए, नारायण के पास में गए, किसी ने रक्षा नहीं की। जहां से पैर में यदि कांटा गड़े तो पैर से ही निकालना होगा, तो ये पैर कौन, भगवान के पैर हैं, ये वैष्णवगण उनके हृदय हैं, भगवान ने उनको दे दिया है और भगवान ने भी, भक्तों ने भी अपना सर्वस्व दे दिया, भक्त के अधीन भगवान में है, इसलिए जाओ अम्बरीश के यहाँ क्षमा मांगो। गए एक वर्ष तक ये खड़े रहे थे, आए और कहा उनको दौड़ करके उनके चरणों में गिरेंगे, देवर्षि महर्षि दुर्वासा उनके चरणों में गिर गए, कहे आज मैंने वैष्णव का महात्मा देखा, जे भक्तों कैसे महात्मा है, भगवान भी उनके वशीभूत हैं। ये शुद्ध भक्त हैं, क्या करते हैं, तन से, मन से, वचन से, समस्त अंगों से सब समय भगवान की सेवा, सिर से भगवान को नमस्कार करते हैं, मन से भगवान की लीला कथाओं का चिंतन करते हैं, हाथों से भगवान का मंदिर मार्जन करते हैं, पैरों से धाम में परिक्रमा करते हैं, समस्त इंद्रियों को भी नियुक्त कर दिया है। ये उत्तम भक्ति की परिभाषा। इससे बढ़कर के हनुमान जी प्रेमी भक्त हैं, ऐसे भक्त हैं प्रेमी, बिना भगवान की सेवा के रह नहीं सकते। एक समय सीता जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी ने कहा, ये दिन भर रात भर तो ये सेवा करता है, हमको सेवा करने का अवकाश नहीं मिलता, इसलिए हम लोग दिन रात की सब सेवा बांट ले। रात की सेवा सीता जी ने ले ली और लक्ष्मण भर शत्रुघ्न ने बांट, इनको कुछ नहीं करने के लिए, बैठो चुपचाप, अब तक तो तुम ही सब करते रहो। उन्हें कहा, जे भाई देखो, बिना तुम्हें सेवा का रहना रह नहीं सकते, हमको चुटकी बजाने का आप लोग आदेश दिए, जब राम को चंद्र को जम्भाई लगेगी तो मैं चुटकी बजाऊं। अच्छा ठीक है, तुम यह चुटकी बजाना, उनको तो जम्भाई कभी आती नहीं है। जब चले गए तब उन्होंने चुटकी बजाना आरंभ के जाने, वो भीतर में ना जाने कब उनको जम्भाई आई, इसलिए और रामचंद्र को जम्भाई आने लगी, अब कोई सेवा ही नहीं कर ग्रहण कर सके, वो सब लोग देखते रह गए। अंत में रामचंद्र जी ने कहा कि इसको पूर्ववत सेवा दे दो, नहीं तो इसी प्रकार से तुम लोगों को हैरान करेगा। ये प्रेमी भक्त हैं। एक समय में सीता जी स्नान कर रही थी, हनुमान जी खोजते 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 वहां पर पहुंचे, और सीता जी उस समय स्नान करके श्रृंगार करके वो सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ने कहा कि माता जी आप ये लाल यहाँ पर क्यों लगा रही, आप तो अपने पति के दीर्घ जीवन के लिए सुखी के लिए, अच्छी बात है। सीता जी तो चली गई, वो घर में घुसे और जितना सिंदूर था तेल मिला करके अपने चारों तरफ में सिंदूर लगा लिया, और राज्यसभा में पहुंचे सभी लोग हंसने लगे, रामचंद्र भी हंसने लगे। ये क्या किया, यदि मैया लगाती है सिंदूर यहाँ और इनका कल्याण है कि दीर्घ जीवी और सुखी रहते हैं, तो इसीलिए मैंने समस्त अंगों में लगा लिया। बहुत तरह की उनकी कथाएं हैं, सब समय कभी रामचंद्र के को कंधे पर ढोते हैं, कभी अपनी लंका के युद्ध में चारों तरफ से परकोटा अपने पूछ का बना दिया, अपने आप प्रहरी बन गए, रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी को मई रावण हर ले गया, वो उनको वहां से उठा लाए, उनको मार कर बहुत से लीलाएं। इसलिए ये प्रेमी भक्त हैं, किंतु इस प्रेमी भक्त से भी पांडव बड़े हैं। संक्षेप में जरा पांडवों की बात बोलो।
सबसे पहले मैं अष्टदेव गुरुपाद पद हूँ, ओम विष्णुपाद अष्टोदश भक्तिवेदांत स्वामी श्री महाराज, और ओम विष्णुपाद परिपाचक आचार्य वर्य अष्टोदश भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात सन्यासी वैष्णव बिंद मातृमंडली को जाति को दंडवत अभिवादन। श्री गुरुदेव ने आदेश दिया कि पांडवों के बारे में कुछ वर्णन करूं। जैसा आप गुरु जी के श्री से सुन रहे हैं, भक्ति के तारतम्य के अनुसार भक्त पांच प्रकार के हैं। ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज जी जो आप लोग सुन चुके हैं, इसके बाद शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज जो कुछ अभी सुनाया, इसके उपरांत प्रेमी भक्त हनुमान जी के बारे में आपने सुना, और पुस्तरी बढ़कर के हैं प्रेम पर भक्त। पांडवों को प्रेम पर भक्त कहा गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग हिंदी से सीरियल जो उत्तर था पहले रामायण महाभारत को देखे होंगे। महाभारत में मेन भूमिका पांडवों का है। ये पांडव को प्रेम पर भक्त कहा गया। हनुमान प्रेमी भक्त तो है, राम को आलिंगन नहीं कर सकते, राम के साथ एक थाली में खा नहीं सकते, उसके अंदर ऐश्वर्य भाव है, इन पांडवों में ऐसा नहीं है। कृष्ण उनके सारथी बन जाते हैं, कृष्ण उनके भाई हैं, कृष्ण उनकी बहन की और अर्जुन सारथी बनते कृष्ण पांडवों के साला बन जाते हैं, इसलिए इतने रिश्तेदारी है नाता है जो हनुमान और राम में संभव नहीं है। ये पांडव युद्ध में कृष्ण सारथी बना दिया, स्वयं भगवान अर्जुन के सारथी तो बने ही, बोले ही नहीं, घोड़े को पैर दबाते हैं, घोड़े को धुलाते हैं, घोड़े को खिलाते हैं, ऐसे पांडव इतने बड़े भक्त हैं। एक समय की बात है, नारद ऋषि पांडव को दर्शन करने के लिए गए, सबसे पृथ्वी पर बड़े भक्त हैं, जाकर सीधे अर्जुन के पक्ष में चले गए। देखा क्या, एक ही बिस्तर के ऊपर अर्जुन और भगवान कृष्ण सो रहे हैं, पूरब की दिशा में कृष्ण का सिर है और पश्चिम दिशा में अर्जुन का सिर है। कृष्ण का पैर अर्जुन के वक्षस्थल के बजा करके इधर है, उधर सुभद्रा देवी अर्जुन की पत्नी जो कृष्ण की बहन और द्रौपदी देवी चावल भजन कर रही है, और कृष्ण का पैर जो कृष्ण के छाती के ऊपर होकर के दुष्टी हो गया उधर रुक्मिणी संगम चावल भजन कर रही है, और अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 निकल रहा है। ये देख करके नाम विश्वास हो गए, अहो अर्जुन इतने प्रिय भक्त है जो कृष्ण अपने पैर को अपनी गोदी में रख करके सो रहे हैं और अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 निकल रहा है। ऐसे अर्जुन इतने बड़ा भक्त है। द्रौपदी के बाद आप लोगों ने सुना जब जुआ खेला में पांडव को हार गए थे उस समय दुर्योधन ने कहा, अरे जब मैं ये इंद्रप्रस्थ देखने के लिए गया था तब इस द्रौपदी ने कहा था अंधा पुत्र अंधा होता है, लाइट फादर लाइट सन, लाइट फादर लाइट सन, क्योंकि ऐसे मैदानों के द्वारा कृष्ण उस भवन को बनवाया था जहाँ पानी है लगता था एक प्लेग्राउंड है, जहाँ बर्फ है आग जल रही है, ऐसे दुर्योधन जहाँ पानी है सोचा ये घास है गया तो डूब गया उसमें, तो द्रौपदी मुंह को छिपा करके रोता है अंधा का पुत्र अंधा होता है, तो ठीक है मैं कैसे अंधा का पुत्र आज दिखाऊंगा। अपने भाई दुष्टासन को आदेश दिया, जाओ उसको पकड़ करके नंदी करके गणना पर बैठा दो। हुआ क्या, साड़ी खींचे तो हरा दुष्टासन साड़ी पर आए सन, दुष्टासन की भुजाओ में 10,000 हाथी का बल था, वो खींचते खींचते थक गया, साड़ी का कोई अंतर नहीं हुआ। देखिए भगवान कैसे हैं, आगे अपने प्रिय भक्तों कैसे रक्षा किया, उनको लाल टूटने नहीं दिया, ऐसे रक्षा। और एक घटना देखिए, बलदेव प्रभु भीम को और दुर्योधन दोनों को बड़ा शिक्षा दिया था और दुर्योधन बहुत ही स्नेह करते थे। अब बताया दुर्योधन की कुछ मांग लो, दुर्योधन ने बताया मुझे देना ही चाहते है सुभद्रा का हाथ मेरे हाथ में थमा दो, ठीक है यही होगा, यानी उसे शादी करना चाहते हैं। ये बलदेव प्रभु बड़े थे इसलिए भगवान कृष्ण भी उसके ऊपर कुछ बोल नहीं सकते थे। सुभद्रा की इच्छा नहीं थी दुर्योधन शादी हो, वो शादी करना चाहते अर्जुन को, ये बड़े भाई के डर के मारे कुछ नहीं करती थी। सुभद्रा देवों की देवी वसुदेव महाराज और वसुदेव और पत्नियां भी कुछ नहीं बोले। तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा तुम सन्यासी बन करके तारका में आ जाओ। अर्जुन को तो बहुत सुंदर सन्यासी का वेश बना लिया, बना करके तारका के बाहर समुद्र किनारे आश्रम में जाके भजन करने लगे। बलदेव प्रभु गए, सब लोग कैप्टन को प्रणाम किया, सुभद्रा भी गई, सब कुछ किया। एक दिन सुभद्रा गई और उनके कृष्ण को उनको सिखा ही दिया था, तो अर्जुन क्या किया उनका रथ छिपा हुआ था, उनका रथ टूटा और उपस्थित हो गया और द्रौपदी को खींच करके उसमें बैठा लिया, बैठा करके और घोड़े का बागडोर द्रौपदी सुभद्रा के हाथ में दे दिया और सुभद्रा रथ थकने लगी। उनके साथ जो बॉडीगार्ड था सुभद्रा देवी के साथ जाके बलदेव को बता दिया कि सन्यासी का अर्जुन है सुभद्रा भरत करके ले जा रहा है। कृष्ण तो चुपचाप बैठे रहे, ताऊ भैया क्या किया उनको ताऊ आ गया, समस्त सेना को ऑर्डर दे दिया जाओ उसको पकड़ो मार डालो और खुद तैयार हो जाने के लिए। देखा कृष्ण चुपचाप बैठे हुए हैं, तो पूछा कृष्ण तुम देखने के लिए तुम्हारा बहन को चुना के ले जा रहे हो क्यों, चलो आज उनको मार लेंगे। तो तब कृष्ण चुपचाप रहे, कृष्ण ने पूछा दाऊ कहा और जो हम के ले जा रहे हैं, देखिए तो घोड़े को कौन हाँक रहा है, मैंने देखो जो सुभद्रा को हाँक रही है घोड़ा को, मुझे लगता है सुभद्रा को अर्जुन हरण नहीं किया, सुभद्रा ने ही अर्जुन को हरण करके ले जा रहा है। उनको मन तो मिल गया, शादी तो हो ही गई और शादी का रसम पूरा करना है, तो आप चाहे उनको मार सकते हैं, आप मारेंगे तो और क्या होगा, आपकी एक पत्नी चहेती बहन है वो विधवा हो जाएगी, आप अपने बहन को विधवा देना चाहते हैं तो मैं क्या करूं, तो उनको बुलाए बुलाकर शादी का रसम पूरा कीजिए। तो तुम क्या पहले क्यों नहीं बताया, अरे दाव आपके डर से कोई कुछ नहीं कहा, बुला करके शादी करवाया। ऐसे पांडवों के वसुंधरा भगवान, जहां जब जब भीड़ पड़ी सब जगह जाकर के कृष्ण ने रक्षा किया। ऐसी कितनी कितनी घटनाएं हैं जो महाभारत में जो रामायण महासीरियल देखने वाले जानते होंगे। समझ लेना बड़ा करके यही हमने बातों को विराम देता हूँ। जो हम मुझे सुना हो मैं व्यक्त किया इसको किया हो क्षमा करेंगे। अच्छा हो ये क्रेडिट गुरु जी के पास जाएंगे। हरे कृष्ण।
तो पांडव लोग विशेष करके अर्जुन इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, कृष्ण उनके रथ को हांकते हैं, अपनी बहन सुभद्रा का उनसे शादी कर देते हैं, हनुमान जी को आदेश दिया कि इनके ध्वजा पर रह करके इनकी रक्षा करना, किंतु थोड़ी सी गड़बड़ी है इनकी भक्ति में। वो क्या, महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कहा कि अब मैं नहीं लड़ूंगा, इस तुच्छ राज्य के लिए मैं अपने कुटुंब के सब लोगों को मार डालूंगा। कृष्ण उनको समझाने लगे, ये सब मरे हुए हैं, देखो विश्वरूप दिखलाया उनके मुख में, सारा ब्रह्मांड उनके दांतों के तले, भीष्म पितामह द्रोण कर्ण सबको मरे हुए देखा। देखकर अर्जुन डर गए और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। जब उसने विश्वरूप को छिपा दिया तो बोले, मैंने आपको सखा कहा है, आप जगत गुरु हैं, जगत के संस्थाओं के भी मालिक हैं, मैंने आपको सखा कहा है, रथ वहां ले चलो ये कहा है, मैंने आपके चरण में अपराध किया है, मैं अब से कुछ नहीं करूंगा। हाथ जोड़कर खड़े हो, उनका सखा का भाव न जाने कहां दूर हुआ, अब सखा कहूंगा नहीं। किंतु और ऊपर चलिए, उद्धव जी भगवान के प्रिय हैं, उनके मंत्री हैं, उनके सखा हैं, उनके चीफ कमांडर हैं, सब कुछ है। ये समझते थे उद्धव जी जो मैं कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूं, प्रेमी भक्त हूं। कृष्ण ने सोचा इसको ब्रज में, ब्रज की गोपियां हमारे विरह में तड़पती हैं और परस्पर हमारी कथा के द्वारा दूसरे एक दूसरे को सांत्वना देती है, किंतु यहाँ पर हमको सांत्वना देने वाला कोई नहीं है। ब्रज में हमने प्रेम का पाठ सीखा, उसी स्कूल में विश्वविद्यालय में ये जाए उद्धव, जहाँ पर ललिता जी एक विषय की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, विशाखा जी एक विषय का और प्रिंसिपल श्रीमती राधिका जी हैं, उस विद्यालय में जा करके प्रेम का पाठ पढ़ करके आए तो मैं इससे बातचीत कुछ करूं, अपने हृदय का भार कुछ हल्का करूं। उद्धव जी को भेजा, उद्धव ब्रज में गए, उन्होंने कृष्ण ने उन्होंने पूछा जी आपके बिना कैसे रह सकता हूं, अरे मैं यहाँ पर टुकड़े के रूप में हूँ, मैं सर्वांगपूर्ण में, मैं वृंदावन में ही तो हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ केवल एक टुकड़ा मैं हूँ, जाओ देखना। जब ही ब्रज में घुसे संध्या के समय में उन्होंने देखा गौए बछड़े चौड़ करके आ रहे हैं, सांड परस्पर गौओं के लिए लड़ रहे हैं, चारों तरफ में घी का दधि का मंथन हो रहा है, गोपियां गोविंद दामो दरमाधवेती, गोविंद दामो दरमाधवेती, गोविंद दामो दरमाधवेती, गोविंद दामो दरमाधवेती। सब गोपियां गा रही हैं प्रेम में तन्मय हो करके, और गायें रंभा रही है बछड़ों के लिए, कोई कह रहा है मटकी ले आओ, दधी दूधने का दूध दुहने का समय है, क्या जब भर गया ले जाओ, इस प्रकार से बड़ी धूम मच गई ब्रज में। थोड़ी देर के बाद में देखा कुछ नहीं, नंद बाबा के घर पर पहुंचे, नंद बाबा ने कृष्ण का प्रिय जान करके उनको बहुत आदर किया। जब कुछ नंद बाबा ने इनको कुछ खिलाया पिलाया, इसके बाद में जब शांत होकर के बैठे, तो बाबा कहना चाहते हैं जी हमारा लाला कृष्ण कैसा है, किंतु उच्चारण नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि मेरा भैया वसुदेव ठीक है, भगवान की कृपा से कंस मारा गया अपने पापों से, अब बतलाओ कैसा है। अच्छा ये कह करके रोने लगे, फिर पूछा कृष्ण कैसे हैं, हमारा लाला कैसा है, बलदेव कैसा है। रोते 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 मूर्छित जैसे हो गए। उद्धव जी ने कहा इतना अधिक प्रेम इनको क्या समझाऊं। कृष्ण ने कहा जी हमारे माता पिता को समझाया, क्या समझाऊं, ये तो कृष्ण के विरह में रो रहे हैं। तो मैं कहूं जो कृष्ण के विरह में मत रोइए तो शास्त्र हमारा मुख बंद कर देंगे। यदि कृष्ण के विरह में कोई हा कृष्ण करके रोए तो उसके कोटि कोटि जन्मों का ये पुण्य फल है, भक्ति का फल है। मैं कैसे कहूं, तो मैं क्या कहूं ये रो खूब, ये भी तो नहीं कह सकता, तो क्या कहूं के दिमाग में नहीं आया। अंत में सोचा और बोले सम जैसे कृष्ण और बलदास साधारण नहीं है, वो तो भगवान है, वे विश्व का उपकार करने के लिए उद्धार करने के लिए आए हुए हैं तुम्हारे बेटे के रूप में। उद्धव नंद बाबा बोले अरे उद्धव तुम अभी बच्चा है, दूध के दांत अभी नहीं गए, अकल तक नहीं है, मैं तो कृष्ण को अपना बेटा समझता था और आज ऐसा बेटा जो भगवान है उसको पा करके भी मैं खो गया। अरे महाराज दशरथ एकमात्र पिता थे जो हा राम कह करके प्राण छोड़ दिए, हमारा तो वज्र के समान में हृदय है, मैं मर भी नहीं सकता। अंत में सवेरा हो गया, सवेरे पहुंच गए वहां गोपियों के समाज में जहां गोपियां थी। गोपियों ने इनसे पूछा संक्षेप उद्धव क्या ये बतला सकते हो, प्रेम दो प्रकार के हैं, एक प्रेम स्वार्थमय होता है और दूसरा प्रेम निस्वार्थ होता है। एक भिखारी भिक्षा के लिए गया, भिक्षा मांगा, राधे राधे, भिक्षा मिल गई, चल पड़ा। गृह मालिक ने कहा जी कुछ कृष्ण की बातें सुनाओ, अभी समय नहीं है, मुझको और जगह जाना है। एक विद्यार्थी पढ़ने गया स्कूल में, विद्या समाप्त हो गई फिर पीछे गुरु के तरफ में कभी आता नहीं है, चिड़िया घोंसले में रहती है एक वृक्ष के टहनियों में, वृक्ष जल गया अब वो फिर कभी वहां नहीं आएगी। वेश्या रुपया के लिए दूसरों से प्रेम करती है, रुपया नहीं अब मिलता उसको दुत्कार देगी। पुरुष भी ऐसे ही हैं, जब तक स्त्री सुंदर है हमारी मन कामनाएं पूर्ण करती है, सब घर का काम करती है ठीक है, यदि किसी प्रकार से आग लग गई उसका मुंह चेहरा जल गया बस रिजेक्ट। इसी तरह से ये स्वार्थ में, किंतु हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति निस्वार्थमय था और कृष्ण का प्रेम निस्वार्थमय था, फिर यह प्रेम टूट कैसे गया। उद्धव जी खुजलाने लगे, उत्तर कुछ नहीं आया। इसलिए प्रेम की पाठशाला में उनकी भर्ती नहीं हुई, विद्यालय देखा, प्रोफेसरों को देखा और फिर उनकी चरणों की वंदना करके लौट गए। क्या वंदना किया, आसाम हो चरण रणी जुसाम हम श्याम वृंदावने किमप गुल्म लतोष दीना जब दुस्तजन स्वजन आज पथन चहित्वा भेजे मुकुंद पदवे सुतिमीना। ओ श्रुतियां भी जिनके चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर सकी, उन कृष्ण को मुट्ठी में लेकर के गोपियों ने उनको वशीभूत कर दिया, ऐसे गोपियों को हम नमस्कार करते हैं। यदि तीर्ण का जन्म लेकर के कहीं जन्म लेना पड़ा और गोपियों का चरण की धूली सिर पर पड़ गई, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभिक्षण सह जा संग हरि कथोत मदोदगीत पुनात भुवनांतरे। ओ गोपियों का विरह, नंद के घर में जो गांव में जो ब्रजवासी लड़के हैं, ग्वाल बाल हैं, उनके सखा हैं, नंद और जसोदा मैया जिनके माता पिता हैं, गोपियां जिनको अपने वशीभूत में करने वाली प्रेम करती हैं, ऐसे नंद बाबा को मैं प्रणाम करता हूं। उद्धव जी देख करके लौट गए और लौट करके कृष्ण से जो कुछ हुआ था बोले। ऐसे उद्धव जी भी जिनके प्रेम की सराहना करते हैं और उनकी चूली चरण की धूली पाने के लिए तीन गुल्म चाहते हैं, और अभी शास्त्रों के अनुसार में वो वृंदावन में गोवर्धन की तलाटी में कुसुम सरोवर के पास में तीर्ण हो करके जन्मे हैं और गोपियों के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये गोपियों की महिला है, गोपियों से बढ़कर के किसी का प्रेम नहीं है। उन गोपियों में भी ललिता विशाखा का प्रेम और उत्तम है और उसमें भी राधिका जी का प्रेम सर्वोत्तम है। आज यही कह करके मैं विश्राम करता हूँ, अपनी कथा का विश्राम देता हूँ। चार दिन की कथा एक दिन में संक्षेप में सुनाई, क्योंकि समय नहीं, इसलिए आज यहीं पर अपनी कथा समाप्त करता हूँ। आप लोग महामंत्र करेंगे, स्टैंड अप एंड डू कीर्तन।